نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 121 آیت نمبر 102 سے 123 سورۃ ہود. لیسن نمبر 121 آیت نمبر 102 ٹو 123 اور سورۃ کا یہ آخری سبق ہے. آج کے سبق کا مین تھیم استقامت ہے. قم فانذر. پوری سورت میں انبیاء کرام کے جتنے بھی قصے آئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پیغام کے ساتھ دیے گئے وہ آج اس سورت کے بالکل آخر میں آئے گا. اور ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اپنی نیتوں کو چیک کرنے کا موقع دیتے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں کہ کہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے میرے ہاتھ سے یہ کلام چھٹتا تو نہیں ہے. سورت میں ہمیں بستیوں پر اللہ کی پکڑ کا قانون بھی سمجھ آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جب قوموں کو پکڑتا ہے تو اس کے بعد پھر لوگوں کی جو دو قسمیں ہوتی ہیں اس کا تذکرہ. پھر ایک اور چیز جو اس سبق میں ہم دیکھیں گے وہ ہے کہ قیامت کے دن کے کیا مناظر ہوں گے. کچھ لوگ خوش بخت ہیں تو خوش بختیوں میں ہیں اور کچھ بدبخت ہیں. پھر آج کے سبق میں پانچ نمازوں کی طرف اشارتاً آیت بھی ملتی ہے. قرآن پاک میں براہ راست نمازوں کے نام اوقات اس کی ڈیٹیلز نہیں بتائی گئیں, اس لیے ہم آپ کو ساتھ تفہیم السنہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں تاکہ سنت کی روشنی میں آپ اپنے نمازوں کو چیک کریں. تو آج کے سبق میں اشارتاً پانچ نمازوں کا تذکرہ موجود ہے اور پھر پوری سورت کا خلاصہ. شروع کرتے ہیں آیتوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہم سب کے وقت میں برکت دے. ہر وہ چیز جو آپ کے سننے کے بیچ میں رکاوٹ بنے وہ اس وقت آپ کی دشمن ہے, چاہے وہ آپ کا عزیز سیل فون ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کے بیچ میں دوسری چیزوں کو لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ نہیں آئے گی. شروع کرتے ہیں آیت نمبر 102. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی ہی ہوتی ہے پکڑ آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو جب کہ وہ ظالم ہوتی ہیں. کیسی ہے اس کی پکڑ؟ ان اخذہ علیم شدید. یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک بھی ہے اور بڑی سخت بھی ہے. پچھلی آیتوں میں مسلسل ہم نے 3, 2, 5 اور اس کے بعد پھر ایک تقریباً 7 مختلف قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی باتیں پڑھی. ان سب کو پڑھتے اور سنتے وقت دل میں خیال آ جاتا ہے کہ کیوں ان بیچاروں کے ساتھ یہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کذالک, ایسے ہی ہوگا. دس از اللہ's عادت, دس از اللہ's سنہ. اور آپ کو اس وقت وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جو ہم نے اس سورت کے انٹرو میں پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہودن و اخواتھا, مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے. اتنا زیادہ قوموں پر عذاب کا ذکر اس صورتوں میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لگ گئی کہ کہیں میری قوم کے اوپر بھی پکڑ نہ آئے. تو اللہ کی پکڑ کا تھوڑا سا قانون سمجھ لیجئے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا یملی للظالم, یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے. کب تک؟ حتی اذا اخذہ, پھر جب اس کو پکڑ لیتا ہے. لم یفلت ہو, پھر اس کو مہلت نہیں دیتا. یعنی اللہ اچانک نہیں پکڑتا, پہلے مہلت دیتا رہتا ہے, حجتیں تمام کرتا رہتا ہے, لیکن لوگ نہیں سنتے. پچھلی قوموں کے تذکروں میں ہم نے دیکھا کہ نبیوں نے ہر ممکن کوشش کی, ایوری پاسبل مین یوز کیا, لیکن قوم شعیب نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ ما نفقہو, ہم تو سمجھتے نہیں تیری باتوں کو, تیری تو بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. کیوں نہیں سمجھ آ رہی تھی لوگوں کو بات؟ کیونکہ لوگوں کی اکثریت نماز اور روزے کو قبول کر لیتی ہے, کیونکہ اس سے عملی باتوں پہ چوٹ کم پڑتی ہے. لیکن سب سے مشکل بات جو لوگوں کو لگتی ہے وہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہوتا ہے. تو جب قومیں ڈھٹائی کا ثبوت دیتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو پکڑ لیتا ہے. یہی بات آج ہم سب کو بتا کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آخر ان لوگوں کو کیوں پکڑا. آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آنا چاہیے کہ آخر کیوں, وہ کذالک کہہ کر اللہ نے کیوں یہ کہہ دیا کہ ہاں میں تو ظالم کو ایسے ہی پکڑوں گا. تو نوٹ کیجئے گا کہ یہاں ظالم سے مراد وہ شخص ہے جس کو ہدایت کا موقع ملا لیکن اس نے اس کی قدر نہ کی. اللہ کا نبی بہت بڑی نعمت تھا لیکن انہوں نے اس کے آگے عذر رکھے. अब सवाल पैदा होता है कि फिर लोग हिदायत के रास्ते से दूर क्यों होते हैं? तो हिदायत के रास्ते की दो बड़ी रुकावटें हैं, बड़ा बड़ा करके लिख लीजिए। और ये दो वो रुकावटें हैं जो कभी नज़र नहीं आती। कभी आपने हर्डल रेस देखी होगी, रास्ते में कभी कुर्सी रख देते हैं, कभी मेज़ रखते हैं और लोगों को उससे बच के जाना होता है। ऐसी मुखालफतों और ऐसी रुकावटों में से गुजरना आसान है, लोग फ़न भी समझते हैं, इंजॉयमेंट के नाम पे कर गुजरते हैं। लेकिन ये वो रुकावटें हैं कि जो नज़र नहीं आती, जिसमें सबसे पहली चीज़ ख्वाहिशात है। ख्वाहिश एक ऐसी बड़ी रुकावट है कि जो हिदायत के तकाज़ों को निभाने नहीं देती। लोग शुरू कर लेते हैं हिदायत का सफ़र, लेकिन जब हिदायत उनसे निभती नहीं है ना, तो वो भाग जाते हैं। ऐसे लोग कौम शुएब में हमने देखे, दौलतमंद भी थे और अल्लाह ने उनको दुनियावी आसूदगियाँ भी दी हुई दी, तो लिहाजा हज़रत शुएब की बातें उनको समझना है। दूसरी बहुत बड़ी रुकावट जो हिदायत के रास्ते में है, लेकिन मज़े की बात यह है कि वो नज़र नहीं आती, और वो अना है। ख्वाहिशात और अना, ये दो ऐसी बड़ी बड़ी रुकावटें हैं कि लोगों को हिदायत की तरफ आते आते रोक लेती हैं और लोग उसके तकाजे पूरे नहीं कर पाते। अल्लाह ताला ऐसे लोग जो अना परस्त हो जाएं, फिर उनकी अना को कुचलने के लिए क्या करते हैं? वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका, अल्लाह पकड़ लेता है। आप कहते हैं कि अल्लाह को तरस नहीं आता, तो मैं आपसे ही पूछती हूँ कि जब आप कॉकरोजेस मारते हैं तो आपको तरस आता है? चींटियों को मारते हुए तरस आता है? तो अल्लाह ताला ने बहुत से मौके दिए, बार बार हिदायत की विंडो ब्लिंक की, पॉप अप हुआ हिदायत का पेज, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। और नतीजा क्या हुआ कि जब वो अपने कामों में लगे रहे तो अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। हम सब के लिए इसमें अमल की बात क्या है कि अपनी फिक्र करें, हर एक अल्लाह की दी हुई मोहलत से फ़ायदा उठा ले, वरना अल्लाह को पकड़ना आता है। अब देखिए कि गुमराह लोगों को खुशहाल देखना, ये ज़ाहिर परस्तों के लिए एक बहुत बड़ा फितना होता है। ख्वाहिश परस्त लोग जब ये देखते हैं ना कि अल्लाह की नाफरमानियों के बावजूद लोग बड़े खुश हैं, कितना इंजॉय किया उन्होंने, कितना मज़ा आया उनको, क्या खूब, व्हाट सो एवर, तो फिर ऐसे लोगों का हिदायत की तरफ आना और ही मुश्किल हो जाता है। वो क्या सोचते हैं कि ठीक है, ऐसी बातें करके भी तो ये लोग खुश हैं, तो हम ऐसी चीज़ों को क्यों फिर इतना मुश्किल करें और इतना बॉदर ना किया करें आप हमें। तो अल्लाह ताला कहते हैं ठीक है, हम आपको बॉदर नहीं करते, लेकिन हम आपको मिटा तो सकते हैं। और अल्लाह ताला इस तरह बस्तियों की बस्तियों को ख़त्म करता है। अगला नुक्ता इस आयत में देखिएगा कि इज़ा अखज़ल कुरा, अल्लाह ने ये कहने की बजाय कि इज़ा अखज़ा अहलुल कुरा, बस्ती वालों को पकड़ना, पकड़ तो बस्ती वालों की हुई थी ना, ये क्यों कह दिया कि बस्तियों को पकड़ लिया? ये बहुत ज़्यादा जोश का अंदाज़ है। ये बिल्कुल ऐसी है कि किसी को ये कहना कि फलां बहुत बहादुर है, या किसी को ये कहना कि वो शेर जैसा बहादुर है, और किसी को ये कह देना कि वो तो शेर है, ये तो मेरा शेर है। क्या फ़र्क है कि शेर बोल के शेर की सारी सिफात ली? बिल्कुल यही असूल इधर नज़र आ रहा है आपको कि बस्ती बोलकर बस्ती वाले मुराद लिए गए। और दूसरी बात, अगर आप कौम लूत के अमल में देखिए तो बस्तियां भी तबाह हुई थी, अपसाइड डाउन हुई, घर टूटे, ज़मीन में होल पड़ गया, बहरे मुर्दार के नाम पे आज भी गंदे पानी की जगह मौजूद है। तो वो जगह भी बदबخت हो जाती हैं जहाँ लोग गुनाह करते हैं, क्योंकि वही ज़ालिमा इन अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। सूरत बुरूज में आता है, इन्ना बदशा रब्बी कल शदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी शदीद है, बहुत सख्त है। वो एक शेर भी है ना कि ना जाओ उसके तहम्मुल पे, कि बड़ी अजीब है उसकी पकड़। अल्लाह पहले ढील देता रहता है, ढील देता है, जैसे आप पतंग को ऊपर चढ़ाते हैं ना, बच्चों को कभी देखा होगा पतंग उड़ाते हैं, पहले डोर ढीली करते हैं, जितनी ढीली करते जाते पतंग ऊपर जाके उड़ने लगती है, और जब फील होता है कि अब पतंग मेरे हाथ से चली जाएगी, तो फिर उसके बाद एकदम खींच लगाते हैं, और बाज़ दफ़ा तो वो पतंग टूट जाती है और बाज़ दफ़ा वापस आती है। यही अल्लाह सुबहाना तआला की आदत है। तो हम सबको अपने ऊपर लेके सोचना है, अगर नाफरमानियों के बावजूद मुझे रिस्क मिल रहा है, माल मिल रहा है, शोहरत, दौलत, इज्जत, मोहब्बत, जो कुछ भी दुनिया में इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, तो कहीं ये अल्लाह ताला की मेरे ऊपर पकड़ ना हो। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पकड़ से बचाए। अल्लाह ताला की पकड़ से बचने की एक दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, उसका तर्जमा ही कम अज़ कम आप लिख सकते हैं कि अल्लाहुम्मा ला तक्तुल नबी ग़ज़बिका, ए अल्लाह मुझे कत्ल ना करना अपने गुस्से के साथ। یعنی جب تجھے لوگوں پر غصہ آ رہا ہوگا تو مجھے اس میں قتل نہ کرنا، ولا تو ہلکنا بی عذابی کا، اور مجھے ہلاک نہ کرنا اپنے عذابوں کے ساتھ، اور کبھی اگر عذاب کا فیصلہ ہو وعافینا من قبل ذالک، اور اگر تو کسی قوم کو پکڑنے کا ارادہ کر لے تو مجھے اس سے پہلے عافیت دے دینا۔ ہم سب زمین کے جن ٹکڑوں پہ رہتے ہیں، جہاں چاروں طرف کفر بھی ہے، الحاد بھی ہے، اور ہوموسیکشلٹی بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب بھی ہے، تو یہ دعا ہماری زبان پہ رہنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بستی کو پکڑتا ہے تو گھن کے ساتھ گیہوں بھی پیستا ہے، سب کو پکڑ لیتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ جن کی نیت اچھی تھی قیامت کے دن وہ اپنی نیتوں کے بل پہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی آیت میں بات تھوڑی مزید واضح ہوئی، آیت 103، ان فی ذلک لآیت لمن خاف عذاب الآخرہ، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوں۔ کون سا ہے وہ دن؟ ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ ایک ایسا دن ہے جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہے پیشی کا، اس دن لوگ پیش کیے جائیں گے۔ اگر آپ اس ایک آیت کے اندر سے قیامت کے نام ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو کتنے نام ملے؟ پہلے دیکھیے عذاب الآخرہ، آخرت قیامت کا فیمس نام ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصلی نام یہی لگتا ہے۔ پھر دوسرا نام یوم مجمون، جمع ہونے کا دن، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اور آخری سب جمع کیے جائیں گے، اولین والآخرین، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر بندہ اس دن جمع کر دیا جائے گا میدان محشر میں۔ اسی طرح یوم المجموع کیوں کہتے ہیں؟ بدن روحوں سے مل جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ وہ اذن نفوس و زوجت، آگے ہم پڑھیں گے تیسویں پارے میں کہ جب جمع کر دی جائیں گی، جوڑ دی جائیں گی روحیں جسموں سے، اسی طرح جمع ہوں گے انسان کے اعمال اور اس کا انجام۔ موت کی صورت میں نام اعمال چھن جاتا ہے، لیکن قیامت کی صورت میں واپس ان کو پکڑا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اسی طرح اگلا نام یہاں قیامت کا آیا ہے یوم المشہود، شاہد، شہادہ، شہد، یہ سب وہی لفظ ہے۔ قیامت کے دن کو پیشیوں کا دن کہا گیا، کیوں؟ نمبر ایک، سب پیش کیے جائیں گے اللہ کے سامنے۔ نمبر دو، اس دن گواہیاں پیش ہوں گی، کچھ انسانوں کے حق میں اور کچھ انسانوں کے خلاف، اور اسی طرح اس دن انبیاء کرام بھی گواہیاں دیں گے امتوں کے بارے میں، اور امت مسلمہ بھی شہادت دے گی دوسری امتوں کے جھٹلانے پر۔ دوسرے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، کذالک جعلناک امتا وسطا لتکون شہداء علی الناس، تو کیا پتہ چلا کہ یوم مشہود، تیسرے بارے میں قسم بھی کھائے گی، وشاہد ومشہود، گواہی دینے والا اور جس کی گواہی دی گئی، دونوں پکڑے جائیں گے۔ اپنے اوپر لیجئے، کبھی خدا نخواستہ عدالت میں جانا پڑے اور کسی کے خلاف گواہی دینی پڑے، یا کوئی آپ کے خلاف دے، بڑا تکلیف دہ امر ہوتا ہے، ایسے وقتوں میں انسانوں کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، قیامت کے دن کون کون میرے خلاف گواہی دے رہا ہوگا، ہم اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ آج ہم دنیا میں لوگوں کی چھوٹی سی بات پہ مائنڈ کر جاتے ہیں، اس نے مجھے یہ کہا تو کیوں کہا، اس نے میری انا کو مجروح کیا، اس نے مجھے ہرٹ کیا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب لوگ سچ کی بنیاد پر ہماری اصل کھو دیں گے۔ اسی طرح یوم المشہود اس لیے کہ اس دن زمین کے ٹکڑے گواہیاں دیں گے۔ سورہ زلزال میں آتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها، زمین کے ٹکڑے گواہیاں دیں گے کہ جہاں بیٹھ کے لوگوں نے اچھے یا برے کام کیے۔ اسی طرح یوم المشہود کیوں ہیں؟ کیونکہ اس دن جسم کے اعضاء، باڈی پارٹس گواہیاں دیں گے، हम पढ़ेंगे सूरह हामीम सजदा में कि उस दिन अल्लाह ताला जब लोगों के मुंहों पे मोहर लगा देगा तो लोगों के अजाब बोलेंगे, उनकी खालें बोलेंगी। तो ऐसे लगता है कि क्यामत के दिन तो सब एक दूसरे के खिलाफ गवाहियां दे रहे होंगे, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने मेरा ये ले लिया, उसने मुझे ये किया। और उस दिन लोग शुक्र कर रहे होंगे कि लोगों ने हमें बुरा कहा, ताकि हमें आज उनकी नेकियां मिल जाएं और आज हम अपने आप को इस चीज़ से बचा सकें। और हकीकत है कि क़यामत का दिन काफिरों पे बहुत बोझल होगा, क्योंकि सारी गवाहियां उनके खिलाफ पड़ रही होंगी, फरिश्तों की, रसूलों की और तमाम मखलूक की गवाहियां कुफार के पीछे होंगी, उनके मुखालिफ होंगी कि इन्होंने अल्लाह की इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला की बात भी ना मानी। क्या होगा, आइए जरा अगला मंजर देखिए, आयत 104। बिल्कुल इनको सुनते वक्त आप लोग अपने आप को मैदान-ए-महशर में खड़ा महसूस करें। वमा नुअख्खिरहु इल्ला लिअजलिन मअदूद, और हम इसे एक वक्त मुअय्यन तक के लिए मौखर किए हुए हैं। किसको? इन गवाहियों को और इस हिसाब किताब को। आज दुनिया में भी लोग गलत काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं हम फौरन नहीं पकड़ते, एक घड़ी मुअय्यन है, इसको बकायदा गिन गिन के और हिसाब लगा के रखा हुआ है। होगा क्या जब वो दिन आएगा? आयत 105, यौम याति ला यतकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निही। जब वो दिन आ जाएगा तो कोई मुतनफ्फिस बात नहीं कर सकेगा, नफ्स कलाम नहीं कर सकेगा, हाँ मगर इल्ला बिइज़्निही, मगर उसकी इजाज़त, उसके इज़न के साथ। और होगा क्या उसके बाद? फमिनहुम शकीयुम व सईद, कुछ तो इंसानों में ऐसे होंगे जो दिन शकी होंगे, बदबख्त होंगे, और कुछ सईद होंगे। दोनों का मंजर मुख्तलिफ है। क्या? आयत 106, फमल्लज़ीना शकू, बस वो लोग जो बदबख्त हैं, फफिन्नार, वो आग में रहेंगे। हालत क्या होगी? लहुम फी गज़फीरुम व शहीक, उसमें उनको चीखना भी है और धाड़ना भी है, जफीर और शहीक की आवाज़ें होंगी जहन्नमियों की क़यामत के दिन, दर्द और कर्ब की वजह से चीखों पुकार करेंगे और फनकारे मारेंगे। ये कौन सी आवाज़ें हैं और ये क्या मंजर है? अल्लाह ताला कहते हैं कि क़यामत आएगी तो लग पता जाएगा। आज थोड़ी सी ताखीर है तो तुम समझते हो कि क़यामत आनी कोई नहीं, आएगी, बस एक अपॉइंटेड टाइम है, बात नहीं कोई कर सकेगा। कैसी बात? अल्लाह से किसी के बात करने या किसी की शिफात करने की हिम्मत नहीं होगी, मगर जिसको अल्लाह इजाज़त दे। हदीस शिफात के नाम पर एक हदीस मारूफ है सही बुखारी में, खुलासा क्या है कि नबी सल्लम ने फरमाया, वला यतकल्लमु यौम इज़िन, कोई उस दिन बात नहीं करेगा, इल्ला रसूल, सिवाय रसूलों के। क़यामत के दिन सिर्फ रसूल बात करेंगे, और बात भी क्या करेंगे? वदावर रसूली यौम इज़िन, और नबियों की उस दिन दावत या उनकी पुकार क्या होगी? अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, या अल्लाह हमें बचा ले, या अल्लाह हमें बचा ले। सोच सकते हैं उस दिन की वहशत को, उस दिन की घबराहट को, क्या हालात होंगे उस दिन लोगों के, किस तरह बदबख्ती उनके सामने खड़ी होगी। कि आज बड़ी बड़ी जुबानें चलती हैं अल्लाह के हुक्मों को सुनकर, क्या होता है जी, कुछ नहीं होता जी, देख लेंगे और वो होगा, साथ साथ आंखों से भी बोल रहे होते हैं, जो सर को भी हिला रहे होते हैं, और ज़ुबान तो रुकती ही नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो ऐसे लोग वहाँ खामोश होंगे। आज दुनिया में लोगों ने कितनी बातें बना ली, फलां अल्लाह के चहीते, हमारे सिफारशी, ये बुजुर्ग हैं, ये अड़कर बैठ जाएंगे, जब तक हमें नहीं जाने दिया जाएगा ये भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इनके वसीले लेते थे, और ये जन्नत के रास्ते में मचलेंगे और अल्लाह के आगे लाड करेंगे, और जब तक अल्लाह नहीं छोड़ेगा ये वहां से निकलेंगे नहीं। अल्लाह कहते हैं इतनी इतनी अदाओं की तो जरूरत ही नहीं होगी, बड़े से बड़े इंसान और किसी बड़े से बड़े फरिश्ते की भी उस दिन हिम्मत नहीं होगी कि अल्लाह से कोई बात करे। रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंतहाई गुस्से में होंगे, अल्लाहु अकबर, कतब अला नफ्सिही रहमा। आज दुनिया में अल्लाह ताला रहम पे है, अल्लाह ताला इज़ सो रिलैक्सिंग। लोग गुनाह कर रहे होते हैं, शायद अल्लाह स्माइल करते होंगे, करने दो, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह को बहुत गुस्सा आया होगा। और आपने सिर्फ अपनी समझ के लिए अगर इसको समझना चाहें तो इंसानों को देखा होगा, कुछ लोगों को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता या बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो हालत क्या होती है। बल्कि जिनको नहीं आता जब उनको आ जाए तो दिल ज्यादा डूबता है। एक तो है जिसको हर वक्त याद आता है गरजने की बोलने की, आप कहते हैं अभी गरज के चुप हो जाएंगे, लेकिन जिनको ना आए और वो एक लफ्ज भी बोल दें उस वक्त आपके दिल का हाल क्या होगा। तो अल्लाह ताला हिल्म वाला है। उस दिन जब वो गुस्से में होगा तो पीछे रिवायत आप सुन चुके हैं कि आदम भी नहीं बोलेंगे कि मैंने दरख्त का फल चख लिया, और उस दिन इब्राहिम नहीं बोलेंगे कि मैंने अपने बाप के लिए बख्शिश की दुआ कर दी, मेरे से झूठ हो गया, जिसको तौरिया कहते हैं। और इसी तरह की तवील रिवायत सोचे, अपने ऊपर लेके सोचिए मेरा उस दिन क्या हाल होगा। क्या किसी का ये कहना कि फलां की अल्लाह के ऊपर बड़ी चलती है और उनके भरोसे पर उनकी सिफारिशों के नाम पे अपने नामे अमाल को स्याह करना, क्या ये खुशबख्ती की अलामत है? हरगिज भी नहीं। ये वो चीज़ है जिसको एक इंसान आज दिल से निकालेगा तो फायदा ही फायदा होगा। और ये जो लफ्ज़ दो आए हैं ना कि उस वक्त जहन्नम में जाकर उनकी हालत क्या होगी, पहले ये लफ्ज़ देखिए कि शकीयुम व सईद। शकी किसको कहते हैं? शिकावत। सख्ती के लिए भी आता है ये लफ्ज़ नंबर एक, सख्त दिल कठोर, और बदबख्ती के लिए भी आता है। और दोनों को देखा जाए तो दोनों मानों में रब्त भी बहुत खूबसूरत है। सख्त दिल कठोर लोग जो होते हैं ना, ये बदबख्ती होते हैं, कोई इनसे प्यार नहीं करता, किसी को ये अच्छे नहीं लगते, लोग इनसे अपने दिल की बात नहीं करते, लोग इनकी मौजूदगी में मिसफिट फील करते हैं। बेरहम के लिए भी ये लफ्ज़ आता है, क्योंकि ऐसे लोग बेरहम होते हैं और फिर बदबख्त भी हैं। तो आप कह सकते हैं कि शकी कौन है? बदबख्त, बेरहम, अल्लाह की रहमत से दूर। सईद का लफ्ज़ साद से है, सीन आइन दाल। साद कहते हैं खुशबख्ती को, सआदत है उर्दू में बोलते हैं, ये तो हमारे लिए सआदत है, वही लफ्ज़ है। ये जब हम कहते हैं ना लब्बैक रब्बना व सादैक, तो जो सादैक है वो भी यही लफ्ज़ है। तो सईद कहते हैं खुशबख्त को, नरम मिजाज, जिसके दिल में रहम हो। सवाल पैदा होता है कि एक इंसान कैसे शकी बनते हैं और कैसे इंसान सईद बनते हैं? माँ के पेट से नहीं ऐसे आते? हाँ, अल्लाह ने अपने इल्म की बुनियाद पे माँ के पेट में ही फरिश्ते से लिखवा दिया था। हदीस में आता है कि चार माँ का जब हमल हो जाता है तो माँ के पेट में फरिश्ता आके बच्चे की जो चार बातें लिखता है उसमें एक ये भी लिखता है कि यह सईद होगा या शकी होगा। और वहाँ सईद और शकी से मुराद जन्नती या जहन्नमी है। तो इन दोनों में एक मानी ये भी लिख लीजिए कि शकी से मुराद जहन्नमी और सईद से मुराद जन्नती होगा। अल्लाह ने वहाँ लिख लिया था क्योंकि अल्लाह को पता था कि दुनिया में आने के बाद ये कैसे काम करेंगे। लेकिन अगर आप और मैं अपने पर लेके सोचें कि हम कैसे बदबख्त होते हैं, नंबर एक गुनाह करके और फिर गुनाह पे शर्मिंदा ना होके। सईद कैसे बनेंगे? अगर कभी गुनाह हो गया तो और नेकियां कीजिए, तौबा इस्तग़फार कीजिए, तो शिकावत सआदत में बदल जाएगी। इसी तरह इंसान शकी होता है कि नेकी तो कर ली और उस पर इतराने लगा तकब्बुर की वजह से, उस नेकी के असर को जाहिल कर देती है। आप अपने ऊपर ही ले लें, कोई आपको चाय का कप पिला दे, बाद में आपके सामने ढींगे मारने लगे, एहसान जतलाने लगे, तो आपको उस चाय के कप की क्या खुशी होगी? तो अल्लाह को ऐसी नेकियों की कोई ज़रूरत नहीं जिसके बाद इंसान इतराना शुरू कर दे। फिर इसी तरह आप देखिए कि दुनिया में अल्लाह ताला इंसान को नेकी का मौका देते हैं। जो लोग नेकी के मौके को अवेल कर लेते हैं ना, वो सईद बन जाते हैं, और जो उसको रिजेक्ट कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं वो शकी बन जाते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि दुनिया की ज़िंदगी वक्ती है, या अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को दौलत भी दी है, माल सब कुछ दिया है, लोग भी ये सोचने लगते हैं और वो भी ये सोचते हैं कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं। हमारे यहाँ अमूमन घरों के बाहर लिखा होता है हाजा मिन फजल रब्बी, ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह का फजल है, लेकिन वो आजमाइश भी हो सकती है। तो दुनिया में किसी को वक्ती तौर पे कुछ अच्छी चीज़ों का मिल जाना ये सआदत की अलामत नहीं है। उस सआदत को क्या कहेंगे जिसके बाद मौत का फरिश्ता आए और सब कुछ छीन के आपको मुझे एक मुजरिम के कुटहरे में खड़ा कर दे। इसलिए जब कभी इंसान को ये धोखा होने लगे कि मैं दुनियावी एतबार से बहुत खुश हूँ, तो फिर मैं बहुत अच्छा हूँ तो अल्लाह की नज़रों में भी ऐसे ही होगा, तो ये इंसान की नासमझी की बात है। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोग जहन्नुम में जब डाले जाएंगे तो वहाँ फुंकारे मारेंगे, और इस तरीके से वो वहाँ बोल रहे होंगे कि हालात क्या होंगे कि ज़फ़ीरुम व शहीक। ज़फ़ीर और शहीक गधे की दो आवाज़ों के लिए आता है। आपने दो लफ्ज सुने होंगे, ढेंचू ढेंचू। गधा जब बोलता है ना तो बहुत आवाज अंदर खींचता है, फिर उसके बाद उसको बाहर छोड़ता है। असल में जहन्नवियों को दर्द, कर्ब और तकलीफ की वजह से जो उनके मुंह से गुरबुलाती हुई और तड़पती हुई आवाजें होंगी ना, उसकी तरफ इशारा है। अल्लाम ला तचलना मिनहु। दुनिया में इनकी जुबानें अल्लाह के हुक्मों के आगे बहुत चलती थी, वहां भी जाके देखे कि अल्लाह ने इनकी जुबानें कैसी कर दी। कब तक ये सब होगा? ये जहन्नम का मंजर, आयत 107, खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे उसमें। यहाँ हा से मुराद जहन्नम। मा दामत समावातु वल अर्द, जब तक के जमीन और आसमान रहेंगे। हाँ मगर इल्ला माशा अरक्बुक, मगर जो तेरा रब चाहे। अब ये छोटी सी आयत है लेकिन कुरान की मुश्किल आयतों में से है। ये कुरान पाक का वाहिद मुकाम है जहां खालिदीन फीहा के बाद कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं। इस तस्ना एक्सेप्ट, हाँ हमेशा रहेंगे मगर नहीं। हमेशा कुरान पाक में आप देखेंगे जन्नतियों के लिए आता है, हुम फीहा खालिदून, दैट्स इट, उस पर आयत खत्म हो जाती है या मौजू पलट जाता है। जहन्नमियों के लिए हुम फीहा खालिदून। लेकिन यहाँ कुछ मुख्तलिफ हैं। छोटी सी आयत में बहुत सारी बातें हैं। पहली बात देखिए कि इस आयत से कुछ लोगों को मुगालता लगा कि चूंकि इधर ये कह दिया गया कि मा दामत इस समावात तू वलर्द, तो इसका मतलब यह है कि लोग जहन्नुम में हमेशा नहीं रहेंगे, और बस जितनी देर जमीन और आसमान कायम रहेंगे उतनी देर ये भी रहेंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ने इसकी तफसीर की कि जहन्नुम में लोग उतनी देर रहेंगे जितनी देर दुनिया में जमीन और आसमान कायम रहे थे। समझ रहे? दुनिया का जितना भी इन्फिनिट टाइम हमें दिख रहा है, अल्लाह का तो उसका पता है। तो जितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम इस दुनिया में जमीन और आसमान रहे, इतनी देर लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा और उसके बाद बिल आखिर निकाल दिया जाएगा। हालांकि ये तावील है। असल में ये क्या है? मा दामत इस समावात वल अर्द, ये अरबों का मुहावरा है, प्रोवर्ब है। जब किसी की एवर लास्टिसिटी या हमेशगी को साबित करना होता था तो अरब ये जुमला बोला करते थे, मा दामत इस समावात वल अर्द। ये उनका मुहावरा था, रोजमर्रा की गुफ्तगू थी, और इसको दवाम के लिए साबित करते थे। कहते क्या थे? हाज दाइमुन दवाम समावाती वल अर्द, यानी ये चीज़ उसी तरह हमेशा रहेगी जैसे जमीन व आसमान रहे। वही मुहावरा अल्लाह ताला ने इधर इस्तेमाल किया। ठीक है, इतनी बात वाजे है। फिर इसी तरह आप देखिए कि लोगों ने एक तीसरी भी इसकी तफसीर की कि दुनिया के ज़मीन और आसमान तो वक्ती थे, वो तो ख़त्म। इज़ असमान फतरत, सूरह इन्फितार के शुरू में हम पढ़ेंगे कि जब आसमान फट जाएंगे। सूरह इंशिकाक के शुरू में आप पढ़ेंगे इज़ असमान उनशक्क़त, जब आसमान फट जाएंगे। वज़िनत लिरब्बी हा वहुक्कत, ठीक है, वइज़ल अर्दु मुद्दत। तो हम सब ये जानते हैं कि क़यामत की सूरत में ये ज़मीन आसमान तो ख़त्म हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि यहाँ समावात और अर्द के साथ दुनिया के ज़मीन और आसमान नहीं मुराद, बल्कि जन्नत या जहन्नम के ज़मीन और आसमान मुराद है। कितनी बारीकियाँ होती हैं ना। हम तो और चीज़ों पे गौर करते हैं ना, इल्म वालों ने इन चीज़ों पे गौर किया। ठीक है, तो वो नहीं फना होंगे तो ये भी नहीं होंगे। इसी तरह सूरत इब्राहिम की आयत 48 में भी एक किसी किस्म का इशारा मिलता है, यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दी वस्समावात, उस दिन जो ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे। तो यहाँ फिर आखरत के ज़मीन और आसमान मुराद हैं, यहाँ के नहीं। और दूसरी बात है कि सिर्फ एक आयत से हम पूरे कुरान और हदीस में कई बार आने वाली बात को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? तो खुलासा क्या निकला कि मुशरिक और काफिर हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे, कोई सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए दिल में ना रखे। हाँ मगर इल्ला माशा, ये कौन है इसको समझ लीजिए तो हमें भी थोड़ी सी अपनी औकात समझ आ जाएगी। इल्ला माशा रब्बुक, सिवाय इसके जो आपका रब चाहे। अब अगर इसको आप देखें तो माँ के फिर कई मानी है, सिवाय इस वक्त के जो तुम्हारा रब चाहे, एक मतलब है। ये तो सिंपल सी बात हो गई कि जितना वक्त अल्लाह चाहेगा उनको जहन्नुम में रखेगा और ख़त्म। तो सिंपल पहला इसका मानी तो क्या हुआ कि ये जहन्नमी जब तक अल्लाह चाहेंगे जहन्नुम में रहेंगे और उसके बाद ख़त्म। तो फिर यहाँ सिंपल बात है, दूसरा मानी इसमें माँ बमानी मन, जो यानी माँ होता है गैर आकिल के लिए, बेजान चीज़ों के लिए, और मन होता है आकिल के लिए। आकिल से मुराद जानदार, जैसे इंसान और जिन्नात है। तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ इल्ला माशा रब्बुक से मुराद अहले तौहीद है। ये मौजू इंशाल्लाह हम 14वें पारे की पहली आयत में तो बहुत ही डिटेल से करेंगे कि रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। एक वो वक्त आने वाला है कि जिस वक्त काफिर कहेंगे काश हम भी मुसलमान होते। वहाँ जाके आपको उसकी बहुत सारी इंशाल्लाह तफसीरें लिखाएंगे, लेकिन उसमें से एक तफसीर क्या है कि अहले तौहीद यानी जिन्होंने शिर्क नहीं किया लेकिन गुनाह थे, हत्ता के कबीरा गुनाह भी थे, नफ्स के गलबे की वजह से कुछ चीज़ें भी थी, तो ऐसे लोग जो हैं उनको बिल आखिर उनके गुनाहों की सजा देने के बाद अल्लाह ताला जहन्नम से निकाल देगा। ये ऐसे जैसे आदि मुजरिम को उसकी सजा पूरी होने के बाद निकाल दिया जाता है, लेकिन जो उम्र कैद वाले होते हैं उनको नहीं निकाला जाता। तो उनको वहां से निकलता देखकर दूसरे जहन्नमी रश करेंगे कि काश आज हम मुसलमान होते तो हम भी जहन्नम से निकल आते। तो क्या पता चला कि ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि जो इंसान को जहन्नम से निकलवा देगा बिलाखिर। लेकिन क्या जहन्नम में कुछ दिन भी रह सकते हैं? कभी ऐसा सोच सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन की तो बात है, अगर हमें रहना भी पड़ गया तो रह लेंगे, तो फिर इसके लिए तो यही है कि चंद लम्हे के लिए उंगली आज स्टोव पे रख के देख ले। दुनिया की आग जहन्नम की आग से 69 टाइम ठंडी है, धो धो के भेजी गई है, जब उसकी हल्की सी लप भी बर्दाश्त नहीं होती तो जहन्नम में कैसे रहेंगे। इस पर पूरा लेक्चर है कि हमारे गुनाह कैसे कैसे धुलेंगे, और उसमें आखिरी मंजर यह कि अल्लाह कुछ गुनाहों को जहन्नम की भट्टी में डाल के जाके फिर ख़त्म करेगा, और जब फिर उनके गुनाह पूरे हो जाएंगे फिर अल्लाह ताला उनको जहन्नम से निकालेगा। और हदीस में यहाँ तक आता है कि कुछ लोग जब बिल आखिर जहन्नम से निकाले जाएंगे तो उनको फिर एक जन्नत के बाहर एक नहर है उसमें डुबकी दी जाएगी, नहर हयावान उसका नाम आता है, वहाँ डाला जाएगा तो वहाँ से उनके जिस्म उगेंगे, क्योंकि जब उनको जहन्नम से निकाला था तो वो कोयलों की तरह बन चुके थे, जले भुने थे। अल्लाह ताला उनको पानी में डालेगा फिर वहाँ से उनके नए जिस्म उगेंगे, लेकिन उनके माथों पे इत्तकुर रहमान लिखा होगा, रहमान के आज़ाद करदा कैदी। अतीक कहते हैं आज़ाद करने वाले को, अतीक अताका से, उतका उसी के अंदर ज़रा और फ़र्क बन जाता है। तो जब वो जन्नत में इधर उधर घूमे फिरेंगे तो उनसे उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये कैदी हैं। कभी आपने देखा है कुछ कैदियों को बेल पे छोड़ते हैं तो उनके हाथ में एक पट्टा डाल देते हैं, कुछ के साथ एक नेविगेशन लगा देते हैं कि वो एक ख़ास एरिया से बाहर नहीं जा सकते, तो लोगों को पता चलता है। इसी तरह की एक पहचान होगी कि ये गुनाहगार जहन्नमी थे जो निकले हैं, फिर उससे उनको शर्म आएगी, कुछ अरसे के बाद फिर अल्लाह ताला उस निशान को उनके माथे से हटा देंगे। इल्ला माशा रब्बुक, लिखिए ज़रा इस माँ के नीचे अपने आप को, चाहती हूँ कि वहाँ जाके तौबा करूँ। देखिए आज दुनिया में खुद को पाक कर लें, आज खुद गुनाहों को छोड़ दें, आसानी रहेगी, लेकिन अगर वहाँ जाके पाक हुए तो बड़ा सख्त हिसाब होगा। ऐसे लोगों को फिर उस वक़्त फ़िक्र करनी पड़ेगी। नाफरमान मोमिन हमेशा जहन्नुम में नहीं रहेंगे, कुछ अरसा रहने के बाद निकलेंगे। और यहाँ इल्ला माशा से वो लोग भी मुराद है कि जो जहन्नुम में गए लेकिन किसी सिफारिश की बुनियाद पर उनको जहन्नुम से निकाला जाएगा। नबी वली या उनकी औलादें, उनका हिफ्स, या जो जो हदीस में बातें मिलती हैं, यानी वो किसी की सिफारिश से जहन्नुम से निकल आएंगे। तो हम तो किसी भी जगह नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा मामला, हम तो इस तरह के नहीं कर सकते, लेकिन ये याद रखिए कि अल्लाह किसी को पकड़े और हमेशा के लिए पकड़ ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको बचा सके, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में भी लोगों को बहुत मुहलत दी थी, इसीलिए फरमा दिया इल्ला मा दामत अस्समावात वल अर्द इल्ला मा शा रब्बुक, मगर जो तेरा रब चाहे। ये रब के फैसलों पर होगा। क्या यहाँ मा शा रब्बुका के साथ रसूलों का भी कहा है? नबीयु का, वलीयु का, पीरु का, वलीयु कुछ भी नहीं, माशा रब। क़यामत के दिन सिर्फ अल्लाह की चलेगी, याद रखिए। दुनिया में तो हम जैसे नाकारों की भी चलती है, हम ये टिकट बुक कराते हैं कि हमने जाना है, अल्लाह कहता जाओ चले जाओ, हम उसी टिकट पे जाके होके आ भी जाते हैं, लेकिन क़यामत के दिन सिर्फ अल्लाह की चलेगी, क्योंकि इन्ना रब्बका फ़ालुल लिमा युरीद। बेशक आपका रब जो इरादा करे उसे कर गुजरने वाला है। अल्लाह अकबर, ये है फ़ालुल लिमा युरीद, कोई उसको नहीं रोक सकता। हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो की मौत का वक्त करीब था, मौत की बेहोशियों में थे। लोगों ने कहा हकीम को बुलाएं, कहने लगे नहीं, मैंने हकीम को दिखा दिया। कहा अच्छा, क्या कहा है उसने? कहा उसने कहा कि फ़ालुल लिमा युरीद, इशारा था अल्लाह की तरफ कि अल्लाह ने मुझे अब कह दिया कि अब आपके मौत का वक्त है। कहा जो भी वो चाहेगा वही होगा, तो अल्लाह की मर्जियों को मान लें, बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। जो मर्जियाँ अपनी करते हैं ना, फिर वो अपनी कितनी को करेंगे, लेकिन अल्लाह की तो माननी पड़ती है। हम कितनी मर्जी करते हैं, लिखिए ज़रा इस फ़ालुल लिमा युरीद के नीचे, बल्कि 30वें पारे की एक सूरत के आखिर में भी आता है, इल्ला माशा रब्बुका इन्नहु फ़ालुल लिमा युरीद, शायद सूरत तारिक या उसके इर्द गिर्द की कोई सूरत है। अल्लाह ताला हमें अल्लाह की मर्जियों पे चलने वाला बना दे। आज ये जो हमें खुद मुख्तारियों का शौक चढ़ा हुआ है ना, मैं जो कर सकती हूँ, पैसा है मेरे पास, अथॉरिटी है मेरे पास, मैं बड़ी हूँ, मेरे पास बड़ी दौलत है, माल है, मैं ये कर सकती हूँ, ये तो मेरे बाएं के हाथ का खेल है, ये मेरे दाएं हाथ का खेल है, और इस तरह के खेल खेलते खेलते हम अपने आप को मुख्तार समझते हैं। एक और जुमला भी नासमझी से लोग बोलते हैं मोहब्बत में कि जो अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे। नहीं, फ़ालुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है वो होता है। एक शख्स ने अल्लाह के नबी के सामने ये बात कह दी थी कि माशाअल्लाह व माशीता, ए नबी वो होगा जो अल्लाह ताला चाहता है और जो आप चाहते हैं। तो आपने कहा जलतनी लिल्लाह निदा, क्या तू मुझे अल्लाह का शरीक बनाता है? नहीं, बल माशाअल्लाह वहदा, वो होगा जो कि अल्लाह चाहेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हम अल्लाह की चाहत को कबूल कर लें। एक अल्लाह की चाहत है, एक हमारी चाहत है। अल्लाह की चाहत को अपनी बना लें तो वो आपकी चाहत को भी रंग लगा देगा।
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد